प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान कृतुदास जी महाराज द्वारा भगवद गीता के अध्याय 18 श्लोक संख्या 78 पर वाराणसी में दिया गया है।
ग्रंथ राज श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज ट्रांसलेटेड एंड कमेंटेड बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। सो आई विल रीड एवरीथिंग and then we'll discuss wherever we were left off. The last sloka of Bhagavad Gita, yatra yogeshwarah krishno yatra partho dhanurdharah tatra sri vijayo bhutir dhruva tatra sri vijayo bhuti dhuva nitir matir mama. So first instruction before I start class, many instructions actually. You have to memorize verse a day, meaning all of you are so bright. BHU students ka arth hai ki very high class university and high class students, intelligent, and most of you are PhD even students. So that is surpassing बहुत उच्च कक्षा की बॉडी शरीर आपको मिला है, जिसमें बुद्धि भी बहुत कुशाग्र बुद्धि मिली है, जस्ट लाइक मैनी ऑफ यू गोप किशोरी एंड मैनी स्टूडेंट ऑफ यू. सो प्लीज यूज दैट शार्प इंटेलिजेंस बिफोर किड्स वॉस्ट अवे. बुद्धि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे बुद्धि याददाश्त, याद करने की शक्ति, सब कुछ क्षय होता जाता है. तो इसलिए आप लोग बहुत बड़े भाग्यशाली हो, आपको आपके भाग्य की सीमा का पता नहीं है कि कितना सुंदर अवसर, कितना सुंदर समय अवसर में तक अपॉर्चुनिटी कितनी सुंदर मिली है कि इतनी अर्ली एज में आप सबको गोपकिशोरी मिली, इस्कॉन मिली, प्रभुपाद जी मिले, कृष्ण ऑन टॉप मिले. इतना ही नहीं, सारे सांप्रदायिक बड़े बड़े चढ़े आचार्य वृंद, स्पेशली रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रिच संप्रदाय आपको मिला. ये आपका भाग्य रुपयों में उनका मूल्यांकन नहीं हो सकता. परार्ध कोटि बहुत बड़ी संज्ञा होती है. परार्ध का अर्थ ब्रह्मा की आयु समझ लो, दिन समझ लो, बहुत बड़ी संख्या होती है. तो परार्ध कोटि प्रारब्ध मल्टीप्लाई बाय कोटी, इतने रुपयों से डॉलर से भी इन जो चीज आपको मिली है उनका मूल्यांकन हम नहीं कर सकते. तो ठीक है, पहला उपदेश ये है, तो आज का इति उपदेश चार है कि हर रोज का एक श्लोक जो आपको अच्छा लगे वो कंठस्थ करो, तो भाषांतर और समझ के उनका अर्थ, शब्दों का अर्थ समझ के भाषांतर अदर कंठस्थ न करो, तो भाषांतर को समझ लो, लेकिन श्लोक कंठस्थ करो. आप आने वाले दिनों में आप बहुत बड़े उच्च प्रकार के विश्व के उच्च उच्च कोटि के चोटी के प्रचारक बनोगे, चाहे आपके अनुयायी इतने ज्यादा ना हो, लेकिन आपका जो सोच समझ होगी आध्यात्मिक, वो बहुत उच्च कक्षा के ऋषि मुनियों से भी ज्यादा, कई कई ऋषि मुनियों से ज्यादा उच्च कक्षा की शास्त्र, उच्च कक्षा का शास्त्र ज्ञान आपको होगा. तो प्रभुपाद जी की श्लोका बुक है, हिंदी में भी अनुवाद हो चुका है और इंग्लिश में भी बहुत बहुत सालों से है प्रभुपाद श्लोक का बुक। और इतना ही नहीं, शास्त्र पढ़ोगे आप, सुनोगे और सुनोगे प्रभुपाद को मेरे लेक्चर, तो उसमें कई कई श्लोक आएंगे जो आप को अच्छे लगेंगे, वो कंठस्थ करना चाहिए। स्पेशली आप लोगों का आपसे मैं चाहता हूँ कि आप सबके पास रिकॉर्डर्स, स्पेशली फोन रिकॉर्डर हैं, तो रिकॉर्ड करो, जब भी आप क्लास दो रिकॉर्ड करो और जो जो श्लोक कोट करो उनको एक बुक बनाओ, छोटी सी डायरी, मतलब कि 3 इंच बाई 2 इंच की डायरी और मे बी 2 इंच बाई वट एवर साइज, स्मॉलेस्ट साइज पॉसिबल, उसमें हर रोज कंठस्थ करने वाले श्लोक लिखो और बड़ी नोटबुक में आप ये सब उद्धृत करो और हमेशा उनका बारंबार पढ़ाई और मनन चिंतन करो। तो एक है ये, और दूसरा लैकिंग पॉइंट में मेरे शिष्यों को पिटाई करना चाहता हूँ कई बार, लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ उन पर तरस खा के, कि आप हर रोज उठ के प्रभुपाद जी के और मेरे लेक्चर सुनो, लेकिन कौन सुनेगा हर रोज डे इन एंड डे आउट। जस्ट लाइक व्हेन यू टेक प्रसादम, व्हेन यू कुक प्रसादम, व्हेन यू ड्राइव, व्हेन यू गो टू बेड, तो हर रोज सुनोगे, कौन सुनेगा लेक्चर, नो हरे कृष्ण मंत्र और सॉन्ग और नथिंग। ये 5 साल तक 20% सॉन्ग्स फ्रॉम इस्कॉन और 80% लेक्चर 5 साल तक, बाद में ज्यादा जो भी सुनना है सुख सुन सकते हैं, सब सब सुनो, ठीक है। ये समय आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, ठीक है ना, अनलेस कि यू हैव डेड एग्जाम एंड यू आर रीडिंग ड्यूरिंग दिस टाइम, खाते खाते पढ़ रहे हैं, या इन वो दिन तो चले गए आपके बचपन के जब खाते खाते पढ़ते थे, अभी तो मैच्योर स्टूडेंट हो और सभी। तो ये दूसरी इंस्ट्रक्शन है, पहली इंस्ट्रक्शन थी कि श्लोक कंठस्थ, वेल अनदर इंस्ट्रक्शन, मेनी इंस्ट्रक्शन इज दैट, ये है कि आप हो सके तो प्रचार करें, ईच वन प्रीच वन, एटलीस्ट 1 पर्सन आपके जो सुनने वाला एक कोई जो भी हो, तो एक को आप ये सब श्लोक और जो भी सुनते हो आप लेक्चर में वो बताइए, तो ये सब आपका हो जाएगा और आप बहुत अच्छे प्रचारक बनोगे और यही आपकी सुंदर लाइफ बनाएगा, ये प्रचार और ये भक्ति सुंदर, अति सुंदर, आप समझ नहीं सकते अभी कि आपका भाग्य कितना बड़ा है। ठीक है, अभी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इवेंचुअली आप देखोगे कि ये बहुत बड़ा भाग्य की बात है। अभी तो हम सोचते हैं इमीडिएट फ्यूचर की नौकरी या मैरिज या पैसा या सो मेनी थिंग्स इमीडिएट फ्यूचर, लेकिन अल्टीमेटली आप देखोगे कि ये सब चीज़ें कभी कभी किसी को दुखदाई भी होती हैं, जैसे मैरिज, डिवोर्स, बच्चे कच्चे उल्टे सीधे बच्चे आए और 16 साल के हुए बच्चे, तो कुछ गंदी आदतें और सब, लगता है कि सब कुछ माला माल है, डिग्री मिल गई, पैसा मिल गया, वाइफ पति मिल गया और सब कुछ बहुत सुंदर सुंदर हो गया, लेकिन कुछ भी कभी भी हो सकता है, भौतिक जगत है। तो इसीलिए ये एक भक्ति ही आपको सुखदाई होगी, ये आप आगे रियलाइज करोगे। तो लेट्स गो टू द क्लास, इंस्ट्रक्शन में देने वाला था कुछ, प्रचार करो, ईच वन प्रीच वन, इवन एक एक को आप प्रीच करोगे तो आपके उम्र, आपकी सारी लाइफ शुभ, बहुत शुभ हो जाएगी, क्योंकि प्रीचिंग से ये आपका जीवन बनेगा, क्योंकि प्रीचिंग से बहुत चीजें आपको मिलेगी। पहला तो आनंद मिलेगा, दूसरा आप भी ऊर्ध्व गति ऊर्ध्व भक्ति में आप ऊंचे उठोगे, प्रैक्टिस में भी ऊंचे उठोगे। मैंने ये कहा तो मुझे करना चाहिए, तो ऐसे आप ऊंचे उठोगे। और आप कृष्णा आपके सर्वोत्तम प्रियतम बनेंगे। न च तस्मान मनुष्य छु कश्चिन में प्रिय कृतम भविता न च मे अस्मत अन्य प्रियतरु भवि। दूसरा कोई मनुष्य मुझे प्रिय नहीं है जितना ये भगवद गीता का कोई प्रचार करता है। तो प्रचार करोगे तो कृष्ण आपको बहुत प्यार करेंगे। प्रियकृतम उच्च प्रकार का मेरा प्रेमी है, मैं प्रेम करता हूँ उच्च प्रकार का उससे। तो इच वन प्रीच वन, तो आज का श्लोक मैं शुरू करता हूँ। आई थिंक पेज 928 उसमें ये दूसरा पैराग्राफ से हम करेंगे। ऐसे अनेक अल्पज्ञ व्यक्ति हैं जो भगवद गीता को युद्ध स्थल में दो मित्रों की वार्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन इससे ऐसा ग्रंथ कभी शास्त्र नहीं बन सकता। कुछ लोग विरोध कर सकते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए उकसाया, जो अनैतिक है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि भगवत गीता नीति का परम आदेश है। यह नीति विषयक आदेश 9वें अध्याय के 24वें श्लोक में है। मन मना भव मत भक्तो, ये श्लोक भी कंठस्थ करो। 34 अर्थात लास्ट श्लोक का जो भी हो, वो 9वें अध्याय का लास्ट श्लोक। एंड यट 18 अध्याय में भी ये प्रभु भगवान फिर से श्लोक कहते हैं, मन मना भव मत भक्तो। तो दो बार श्लोक आया है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य को कृष्ण का भक्त बनना चाहिए और सारे धर्मों का सार है कृष्ण की शरणागति। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवत गीता का उप आदेश धर्म तथा नीति की परम विधि है। अन्य सारी विधियां भले ही शुद्ध करने वाली तथा इस विधि तक ले जाने वाली हो, लेकिन गीता का अंतिम आदेश समस्त नीतियों तथा धर्मों का सार वचन है। कृष्ण की शरण ग्रहण करो या कृष्ण को आत्मसमर्पण करो, यह 18वें अध्याय का मत है। तो ये 18 अध्याय का मत क्या है? ये दो श्लोक। दो श्लोक कौन से? मन मना भव मद भक्तो मंद्याजी मां नमस्कार मामे वशिष्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी मे। और दूसरा श्लोक कौन सा है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो मैंने शरणागति की परिभाषा की थी, किसको याद है? शरणागति कितने प्रकार की है बोलिए। अनुकूलेन संकल्प प्रतिकूलेन वर्जनम रक्षयतीति विश्वासो गोपृत्वे वर्णन तथा आत्मनिक्षेप काल्पनीय। सो आत्मनिक्षेप सरणा अपना आत्मसमर्पण करना, काल्पनीय, काल्पनीय का अर्थ है अटमोस्ट ह्यूमिलिटी विनम्रता। ये 6 प्रकार की शरणागति है। तो मामेकम शरणम व्रज, मेरे एक के शरण में आ। तो मैं क्या करूँगा? मैं आपको सब पापों से, सब दूषणों से, दुर्गुणों से, सब प्रकार की दुखों से मैं आपको मुक्त करूँगा। भगवान कृष्ण हमें मुक्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? वो आगे वाला श्लोक कहता है, मन मना, मन मुझ में रख, आपका मन मुझ में रख, अर्थात भगवान का स्मरण कर। जैसे आगे वाले दो श्लोकों में मैंने पुनः पुनः कहा था, मुहुर मुहुर कहा था कि संश्रुत्य, ये चार बार इस शब्द है, दो श्लोकों में चार बार, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। संश्रुत्य संश्रुत्य मतलब कि भगवान श्री कृष्ण को स्मृति में रखना। जैसे आप सब लोग स्टूडेंट हो तो बहुत कुछ पैराग्राफ कंठस्थ करते हो, गोखम पट्टी बोलते हैं, क्रैमी को क्या बोलते हैं, एनीवे क्रैम करना मीन गोखण, गोखना याद करना, गोखना या याद करना या कंठस्थ करना, गोखण पंक्ति का कंठ कंठस्थ करना। तो ये संश्रुत्यु संश्रुत्यु मीन्स याद 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 करना, हमेशा श्री कृष्ण को दो कौर के बीच में याद करना, दो कदम के बीच में याद करना, चीजें करने के बीच में याद करना, हमेशा याद करना। संश्रुत्यु संश्रुत्यु संश्रुत्य पुनः पुनः मुहु मुहु। तो आप सबकी याददाश्त बहुत सुंदर है, कोई PhD कोई मास्टर, तो याददाश्त सुंदर है। तो याद क्या करना है, सबसे पहले कृष्ण को याद। तो मन मना, मन मना का अर्थ है संश्रुत्यु संश्रुत्यु, मन में हमेशा भगवान को श्री कृष्ण को मन में रखना। मन मना भव मत भक्तो, मेरा भक्त बन, श्री कृष्ण की भक्ति करना। और भक्ति नवडा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्म निवेदनम। और ये नवडा भक्ति में भी श्रेष्ठ भक्ति है संश्रुत्यु 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 संश्रुत्यु। और उसमें भी अच्छी भक्ति है सकल साधन श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्णादित्य धारे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लैले पाए प्रेम धन। निरपराध वैष्णव अपराध, नाम अपराध के बिना जो हम नाम जप करते हैं तो वो शुद्ध नाम है, और ये शुद्ध नाम ही सर्वोत्तम भक्ति है। तो मन मना भव मत भक्तो, मेरा भक्त बनना मतलब 16 माला नीर अपराध, तो 10 अपराध के बिना 16 माला करना ध्यान से, संश्रुत्यु 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 संश्रुत्यु, ध्यान से 16 माला करना। मन मना भव मत भक्तो, ये भक्ति है 16 माला। मध्याजी मेरी सेवा अर्चन पूजन डीटी वर्शिप भोग लगाना वगैरह अर्चन है, तो अर्चना मनमना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कार, उनको नमस्कार करना, सात बार प्रणाम करना, दंड साष्टांग दंडवत प्रणाम करना, ये भी भक्ति है। मैं नतमस्तक हूँ अर्थात मैं शरणागत हूँ, दंडवत प्रणाम का अर्थ क्या होता है, मैं शरणागत हूँ। तो ये भगवान कहते मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैशिष्य युक्त एवं आत्मानम मत्परायण, ऐसा करने से तू मेरे पास आएगा और मैं आपके पास रहूंगा। तो भगवान कृष्ण को हम हर हालत में चाहते हैं, यही भगवान है, सृष्टि के रचयिता है, और हमें हर रोज ये महसूस करना चाहिए कि कृष्ण मेरे हृदय में है, मेरे चित्त में है, मेरे मन में है, और वो हर पल हर सेकंड हर लव वो मुझे जो भी करता हूँ देख रहे हैं, और उनको खुश करने की मेरी तैयारी मेरी चेष्टाएं, उनको खुश करने की मेरी चेष्टाएं होनी चाहिए, ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदश्च सर्वैरहमेव विद्यो वेदांत, अर्थात मैं सबके हृदय में स्थित हूँ और उपद्रष्टा उन्मत्ता, और मैं ओवरसीयर हूँ, मैं जो भी लिविंग एंटिटी जो भी जीव करता है उनको मैं देखता हूँ, उपद्रष्टा उन मनता, और मैं अनुमति देता हूँ, या तो मैं उनको उनमनता अनुमति, या वो जो चाहता है मैं उनको वैसी सुविधाएं देता हूँ, वैसा शरीर देता हूँ, उनमनता उपद्रष्टा उनमनता। तो ये भगवान कृष्ण ही हमारे आजू बाजू आस पास आकाश में विश्वपति का वास, तो हर जगह है कृष्ण, और हमारे हृदय में है, हमारे चित्त में है, मन में है, और ये हर पल हमें देख रहे हैं। तो ये हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो उनका ये संस्मृत्य स्मरण स्मरण में होना चाहिए। तो ये बहुत बहुत बड़ा रियलाइजेशन। दूसरा पैराग्राफ नेक्स्ट। भगवद गीता से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागत सर्वोच्च सिद्धि है। यह भगवद गीता के आदेशों का सार है। सो ध्यान और ध्यान और ज्ञान से श्रेष्ठ, यहाँ प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। ध्यान दो, भगवद गीता से फिर से पढ़ता हूँ। भगवद गीता से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। तो ध्यान और ज्ञान और सबसे ऊंची सिद्धि क्या है?
शरणागति।
वंडरफुल। तो शरणागति क्या छह प्रकार की है हमने अभी चर्चा की, ठीक है ना? अनुकूलेन संकल्प, प्रतिकूलेन वर्जनम, रक्षयति विश्वासो, गोप्रुत्वे वर्णन तथा आत्मनिक्षेप काल्पन्य सर्वविधा शरणागति। ये सर्वोच्च सिद्धि है, ध्यान और ज्ञान से भी सर्वोच्च सिद्धि है। ओके, आगे पढ़ता हूँ। यह भगवद गीता के उपदेशों का सार है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अनुष्ठानों कर्मकांड का मार्ग ज्ञान का गुह्य मार्ग हो सकता है, लेकिन धर्म के अनुष्ठान के गुह्य होने पर भी ध्यान तथा ज्ञान गुह्यतर है, तथा पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुह्यतम उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है। तो ज्ञान ध्यान और कर्मकांड और सब अनेक अनेक अनुष्ठान और विधि विधान नियम, सब नियम में सब में सर्वश्रेष्ठ उपदेश गुह्यतम उपदेश क्या है? तो आगे पढ़ता हूँ, आपको पता चल गया। भगवद गीता की अन्य विशेषता यह है कि वास्तविक सत्य भगवान कृष्ण है। सबसे बड़ी समझौता ये है कि वास्तविक सत्य क्या है? भगवान कृष्ण ही सत्य है, और सब कुछ असार है, असत्य है। परम सत्य की अनुभूति तीन रूपों में होती है, निर्गुण ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान श्री कृष्ण। परम सत्य के पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कृष्ण का पूर्ण ज्ञान। यदि कोई कृष्ण को जान लेता है तो ज्ञान के सारे विभाग इसी ज्ञान के अंश हैं। तो कृष्ण को जान लेता है तो सब कुछ ज्ञान उनको मिल गया। कृष्ण दिव्य है क्योंकि वे अपनी नित्य अंतरंगा शक्ति में स्थित रहते हैं, जीव उनकी शक्ति से प्रकट है, और दो श्रेणी के होते हैं, सत्यबद्ध तथा नित्य मुक्त। ऐसे जीवों की संख्या असंख्य है, और वे सब कृष्ण के मूल अंश माने जाते हैं। भौतिक शक्ति 24 प्रकार से प्रकट होती है, सृष्टि शाश्वत काल द्वारा प्रभावित है, और बहिरंग शक्ति द्वारा इसका सृजन तथा संहार होता है। यह दृश्य जगत पुनः पुनः प्रकट तथा अप्रकट होता है। तो ये भौतिक संसार पुनः पुनः प्रकट अप्रकट होता है, इनसे हमारा कोई सरोकार नहीं है। हमारा सीधा डायरेक्ट संबंध है कृष्ण से, और कृष्ण से तुम्हार कृष्ण द्वितीय पार तुम्हारा सकती याची, हमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली दाए तबु पाछे पाछे। तो कृष्ण एंड गुरु यही हमारा सब कुछ है। भगवत गीता में पांच प्रमुख विषयों की व्याख्या की गई है, भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म। तो भगवत गीता में कौन से पांच प्रकार की संस्तुति की गई है? सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है, परम सत्य की सभी धारणाएं, निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा अन्य दिव्य अनुभूतियां भगवान के ज्ञान की कोटि में सन्निहित है। तो सब कुछ भगवान कृष्ण में ये सन्निहित है। सन्निहित का मतलब है समाय है, अर्थात ये सब श्री कृष्ण में, कौन? अंतर्यामी कृष्ण ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा ब्रह्म, अन्य विभूतियां, सब कुछ, ज्ञान, सब कुछ श्री कृष्ण में सन्निहित है। सन्निहित का अर्थ क्या है? कौन हिंदी भाषी है? सन्निहित का अर्थ क्या है? इंक्लूडेड, वेरी गुड, इंक्लूडेड, सन्निहित, सन्निहित। यद्यपि ऊपर से भगवान जीव प्रकृति तथा काल भिन्न प्रकृति भिन्न प्रतीत होते हैं, लेकिन ब्रह्म से कुछ भी भिन्न नहीं है। लेकिन ब्रह्म सदैव समस्त वस्तुओं से भिन्न है। तो ये वैष्णव सिद्धांत प्रभुपाद जी कहते हैं, आगे बोलते हैं, भगवान चैतन्य का दर्शन है अचिंत भेदाभेद। यह दर्शन पद्धति परम सत्य के पूर्ण ज्ञान से युक्त है। तो ब्रह्म सब कुछ ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म सब कुछ नहीं है, और ब्रह्म कृष्ण है, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम, परम। तो कृष्ण ही सब कुछ है। तो अचिंत्य भेदाभेद तत्व, कृष्ण सब कुछ है और सब कुछ कृष्ण नहीं है। यह दर्शन पद्धति परम सत्य के पूर्ण ज्ञान से युक्त है। जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है, वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। इस प्रकार भगवान कृष्ण की उपमा सूर्य से दी जाती है और जीवों के सूर्य प्रकाश से। चूंकि सारे जीव कृष्ण की तत्व शक्ति है, अतएव उनका संसर्ग भौतिक शक्ति अपरा या आध्यात्मिक शक्ति परा से होता है। दूसरे शब्दों में जीव भगवान की दो शक्तियों के मध्य में स्थित है, और चूंकि उसका संबंध भगवान की पराशक्ति से है, अतएव उसमें एक चित स्वतंत्रता रहती है। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है। इस प्रकार वह आह्लादिनी शक्ति की अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। सजीव तथा शक्ति है, भेदाभेद प्रकाश, कहीं दिव्य शक्ति में, कभी माया शक्ति में जीव रहता है। और ये जीव ज्यादातर जीव ये भगवान कृष्ण की पराशक्ति है, परम शक्ति है। इसलिए ज्यादातर ये जीव आह्लादिनी शक्ति उनकी सामान्य दशा है। आह्लादिनी शक्ति का अर्थ है एंजॉयिंग स्पिरिट एंड गिविंग प्लेजर टू कृष्णा, भगवान को खुश करना वगैरह। ये स्वाभाविक स्थिति है, ये स्वाभाविक स्थिति जीव की है। आनंदमय अभ्यासात, जीव आनंदमय है, उनका अभ्यास आनंदमय है। यहाँ हम भगवद गीता संपन्न करते हैं। एनी क्वेश्चन एट ऑल? बोलिए। संन्यास की स्थिति फिर से बोलिए। उसका तात्पर्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण की शरणागति यही संन्यास है। संन्यास का अर्थ है कि इस भौतिक जगत को त्यागना और परम ब्रह्म श्री कृष्ण में स्थित होना, अर्थात ये भौतिक जगत को भगवान श्री कृष्ण के साथ जोड़ देना, अर्थात इस भौतिक जगत की सब चीजें भगवान श्री कृष्ण के लिए उपयोग करना, भगवान कृष्ण की सेवा में उपयोग करना, इसको संन्यास कहते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में कि हरि संबंधी वस्तु ना प्रपंचयात्मिका बुद्धि प्रपंचयात्मिका, तो ये श्लोक है आप प्रपंचयात एनी आल गिव गोप किशोर दिस श्लोक का। एनी अदर क्वेश्चन? सो दिस इज संन्यास। संन्यास मीन्स यूजिंग एवरीथिंग अवर, संन्यास मीन्स सब कुछ जो हमारा है, हमारे आजू बाजू है, हमारे दूर है, सब कुछ भगवान कृष्ण का है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए ही उनका उपयोग करना, ये संन्यास। समझ में आए? एनी अदर क्वेश्चन? फिर से धीरे धीरे बोलिए। हाँ जी, तो ये बहुत बड़ी फिलोसॉफी है, ये दर्शन है चैतन्य महाप्रभु का। अचिंत मीन्स अचिंत का अर्थ क्या होता है? अचिंत की अचिंत का अर्थ क्या है? कि इनकंसीवेबल, हमारी भौतिक इंद्रियों से आध्यात्मिक चीजें समझने की हम कोशिश करेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा। इनको बोलते हैं अचिंत। अचिंत खलु ये भावा, महाभारत का श्लोक है, अचिंत खलु ये भावा। ये भाव जो है परम भाव, या आध्यात्मिक भाव, या आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक चीजें, आध्यात्मिक नाम, आध्यात्मिक कृष्ण, आध्यात्मिक आत्मा, ये सब अचिंत खलु ये भावा। ये भौतिक इंद्रियों से इन चीजों का, आध्यात्मिक चीजों का हम अनुभव या ज्ञान या स्पर्श या देख नहीं सकते हम, ये दिव्य दृष्टि से। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी। तो अचिंत खलु ये भावा, भौतिक इंद्रियों से हम आध्यात्मिक भाव को, आध्यात्मिक चीजें, आध्यात्मिक कृष्ण, आध्यात्मिक आत्मा, आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक नाम, हम उनका अनुभव नहीं कर सकते। इसीलिए सेवन मुखे है जीवादो स्वयं एव स्फुरत्य, जीभ से मुंह से भगवान का दिव्य नाम का सेवन करने से स्वयं नाम प्रभु ही हमारे पर कृपा करेंगे और ये सब आध्यात्मिक चीजें हमें, आध्यात्मिक चीजों का हमें अनुभव होगा, होगा जरूर। लेकिन न भवेत ग्राह्य इंद्रिय सेवन मुखे जीवा दो, ग्राह्य इंद्री भौतिक इंद्रियों से आध्यात्मिक चीजों का अनुभव हम नहीं कर सकते। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि सेवन मुखे, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्य इंद्रिय सेवन मुखे जीवा दो स्वयं एव स्फुरत्य द, ये स्वयं हमारी मुख और जीभ से हम आध्यात्मिक नाम का सेवन करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, तो स्वयं ये स्फुरित होगा अपने अपने अपनी अनुकंपा से, अपने अपनी कृपा से। ये नाम प्रभु कृष्ण हमें स्वयं स्फुरित होंगे, दर्शन देंगे और देंगे ही, लेकिन भौतिक इंद्रियों से हम उनका अनुभव नहीं कर सकते। समझ में आए? तो अचिंत वेदाभेद का अर्थ है कि इट इज इनकंसीवेबल, साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट। हिंदी में ये अचिंत्य है और एक साथ जीव और कृष्णा और भौतिक जगत सब एक है और एक नहीं भी है, अचिंत भेदाभेद तत्व। इसलिए कृष्णा इज एवरीथिंग बट एवरीथिंग इज नॉट कृष्ण, ये बड़ी फिलोसॉफी है। इसका इसके लिए सब कई लोगों ने पीएचडी की है इसके ऊपर, अचिंत भेदाभेद तत्व, इतना ही सेंटेंस है, चार शब्दों के पर कई लोगों ने पीएचडी की है, कई कई लोगों ने, और पीएचडी डिग्री भी मिली है उन लोगों को, जैसे आप बीएचयू में पीएचडी डिग्री मिल रही है। तो ठीक है, और कोई सवाल? ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।